Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
मनोज सर हाजिर हों।
सबको मेरा नमस्कार। मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था आज, पता नहीं क्या हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई।
चलिए, बहरहाल आपका स्वागत, सबका स्वागत। और टाइम हो चला है और मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हम हाजिर हैं मंजा पर कहानियों का बेहद खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है वही कहानी बुनो। और आज है कहानी बुनो का 16वां एपिसोड। मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी, हमारे मेंटोर सजीव सारथी जी, विश्व दीपक जी और मरियम जी, और बाकी तमाम हमारे सुनने वाले दोस्त जिनसे हमें लगातार मिल रहा है ढेर सारा प्यार। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं और सुनाते हैं छोटी छोटी मगर बेहतरीन कहानियां, जो हम या आप में से ही किसी की लिखी होती है। दोस्तों दुनिया का सबसे खूबसूरत सफर है इश्क का सफर। वैसे तो हमारी पूरी जिंदगी ही एक सफर में ही मुसलसल गुजरती है, लेकिन इसमें से जो इश्क का सफर है वो सबसे खूबसूरत है। यही वह सफर है जो मंजिल मकसूद से बेफिक्र रहता है, यानी उसे किसी मंजिल पर पहुंचने की परवाह नहीं होती। ये वो सफर है जो खत्म होने का भी नाम नहीं लेता। और खत्म हो भी भला क्यों, क्योंकि इश्क के राही को मंजिल मिल जाए तो इश्क फना हो जाता है। जैसे दिन मुकम्मल हो जाए तो उसका वजूद अगली तारीख के लिए खत्म हो जाता है और रात चली आती है। अधूरापन ही इश्क की खूबसूरती है। महान मॉडर्न फिलोसफर ओशो ने भी यही कहा है कि प्रेम पूरा हुआ तो मिट जाएगा, प्रेम को पूरा मत होने दो। प्रेम अधूरेपन में लगातार बढ़ता ही जाता है, इसलिए इसके खत्म होने का अंदेशा मिट जाता है। शायरों ने इसीलिए तो कहा है कि इश्क फना होने का नाम है। बहरहाल जिस किसी ने भी इस सफर में मंजिल की तलाश की, गोया उसने इश्क को ही रुस्वा कर दिया, यानी के बदनाम कर दिया। आप अगर गौर करें तो मोहब्बत की जितनी भी बेमिसाल कहानियां हैं, चाहे वो फिल्मों के जरिए आप देखें या फिर उपन्यासों के जरिए देखें या बड़ी बड़ी एपिक के जरिए देखें, वो सब की सब अधूरी ही हैं। श्री फरहाद हो या लैला मजनू की कहानी हो, रही रांझा की कहानी हो, या फिर हम में से ही कोई मोहब्बत के दो परिंदे हों, जाहिर है इश्क है तो जुदाई तो होगी ही ना। मगर इश्क करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक दूसरे से जुदा हो। खुदा ना करे कि कोई आशिक अपने माशूक से जुदा हो, मेरा तो यही ख्याल है। ये आशिक माशूक जब जुदा होते हैं ना, तो लगता है उनकी पूरी दुनिया ही उनसे जुदा हो गई हो, और मानो उनसे उनका रब रूठ गया हो। वो दर्द, वो तड़प, वो टीस, सब उनकी तन्हाई में आकर सताने लगते हैं, और तब वो अहमद फराज बनकर चीख उठते हैं, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए या। दोस्तों इस जुदाई के दर्द को शायर खालिद शरीफ कुछ यूं बयां करते हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से किरुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये वीरानियां भी अलामत है मोहब्बत की, फिर इससे इनकार भला कैसे किया जा सकता है। अगर मोहब्बत में जुदाई नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के तमाम संगीत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत नगमे रचे गए होते। जुदाई को सेंटर में रखते हुए हमारे गुल्लू चाचा, वही यानी गुलजार साहब ने भी तो क्या खूब फरमाया है कि जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। बहरहाल इस मौजू पर मैं घंटों बोल सकता हूं और अनगिनत अशआर पढ़ सकता हूं। फिलहाल मैं इस शेर के साथ दीपिका जी से मुखातिब हूं कि वो आज के टॉपिक काश हम जुदा ना होते पर आज की कहानी पढ़ें। उसके बाद सजीव सारथी सर एक जरूरी ऐलान को अंजाम देंगे, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और इस शेर के साथ मैं दीपिका जी को कहूंगा कि वो क्या गया कि दरोबाम हो गए तारीख। दरोबाम मतलब दरवाजा घर, और तारीख मतलब अंधेरा। वो क्या गया कि दरोबाम हो गए तारीख, मैं उसकी आंख से घर का दिया जलाती थी।
वाह वाह वसीम जी, बहुत खूब। शुक्रिया। और जैसा कि हमारी कहानी बुनो के टॉपिक्स रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी कहानियां आती हैं, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ, काफी सारी कहानियां आई। पर इस बार वसीम जी, जो हमने टॉपिक दिया था, जिस तरह से शायद हम उसको चाह रहे थे, तो उस तरह से कहानियां शायद नहीं मिल पाई, नहीं वसीम जी?
जी जी।
तो
हम अक्सर ये कहते हैं ना कि हम, हमारा जो टॉपिक होता है वो बहुत सेंट्रिक टॉपिक है, बहुत मतलब कंक्रीट होता है अपने आप में, तो उससे जरा सा भी इधर उधर अगर हम होंगे तो हमारी कहानी बिखर जाएगी, है ना, हमारे शो का फॉर्मेट बिखर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उससे जरा सा भी इधर उधर ना हो, ताकि वो एक सीखने का एक पैमाना है ना कि हम कितनी लिमिट में किस तरीके से उस टॉपिक से रिलेटेड उसको सेंटर में करके लिखें, ताकि वो कहानी सुनने में खूबसूरत लगे और आपको पढ़ने में मजा भी आए।
जी, तो आज की कहानी दोस्तों हमारे वसीम जी ने ही लिखी है और टॉपिक सबको पता है, काश हम जुदा ना होते। तो एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी कहानी, जैसा कि हम सब जानते हैं वसीम जी बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और आज तक हमने अभी 4 या 5 कहानियां हमने विश्वदीपक जी की भी पढ़ी हैं, तो विश्वदीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की कहानी मैं पेश करती हूँ वसीम जी की लिखी हुई, काश हम जुदा ना होते। वक्त बड़ा ही बेरहम होता है, हम जब वक्त के साथ नहीं चल पाते तो वक्त भी हमारे साथ नहीं चल पाता। तब बहुत मुमकिन है कि वक्त हमें अपने सितारों की गर्दिश में धक्का ही दे दे, मगर मोहब्बतें ऐसी गर्दिशों से कहां डरती हैं भला, वो तो निकल आती हैं वहां से, या फिर गर्दिशों के आने से पहले ही रूप देती हैं। मगर ये भी तो सच है कि सबकी किस्मत में ऐसी मोहब्बतें नहीं होती। अजय और नेहा दोनों अपने अपने घरों में बैठे एक दूसरे के ख्याल में डूबे हुए थे। एक अरसे से दोनों के चेहरे पर जुदाई की तकलीफ अपनी तस्वीर बनाने लगी थी। लैपटॉप पर काफी देर तक अनमने ढंग से काम करने के बाद अजय उठा और किचन में चला गया। उसे चाय की तलब लगाई थी। चाय का डिब्बा सामने रखा था पर उसे दिखा ही नहीं। किसी चीज के नजर आने में दिमाग में उसकी तस्वीर का बनना जरूरी होता है। उस वक्त उसे भले चाय की तलब थी, लेकिन उसके दिमाग में नेहा की कॉफी की तस्वीर बनी हुई थी, इसलिए वह कॉफी का डिब्बा खोजने लगा जो कई मसालों के डिब्बों के पीछे कहीं छुपा था। अब नेहा की याद में भीगी पलकों से सब धुंधला नजर आ रहा था। सामने होते हुए भी चाय न मिली। अजय अदरक वाली कड़क चाय का शौकीन था और नेहा कॉफी विदाउट शुगर की शौकीन थी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनको लेकर उन दोनों के बीच इख्तलाफ यानी मतभेद था। दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग, और इसलिए अक्सर उन दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी। यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक पीर घाट और दूसरा मीर घाट। अब दो घाट तो रेल की दो पटरियों की तरह ही होते हैं ना, भला कहां मुमकिन है कि दोनों एक साथ हो पाएं? इसलिए जरूरी है कि कोई एक अपना वजूद छोड़ दे, या फिर दोनों अपना वजूद छोड़कर एक दूसरे के वजूद में शामिल हो जाएं। कॉफी वो डिब्बा नेहा ही लाई थी। जब से वो अपने घर गई थी तब से वो अभी तक खुला भी नहीं था। अजय ने डिब्बे से मग में दो चम्मच कॉफी निकाली और उसमें चीनी और जरा सा दूध डालकर फेंकने लगा। दूध और चाय चीनी की मोहब्बतें पाकर कॉफी अपना वजूद छोड़कर उनके वजूद में ढलने लगा। मोहब्बतों को भी तो ऐसे ही दूसरे को एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए ना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो वक्त की बेरहमी को बर्दाश्त कर पाए। कॉफी फेंटते हुए ही अजय अपने बेडरूम में चला गया, जहां सामने की दीवार पर नेहा की एक खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। अजय की आंखों में उस तस्वीर की पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उस फिल्म के चलने में अजय ने कप कॉफी बनाई
और कब वापस अपने लैपटॉप पर आकर बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। उधर नेहा के पापा ने आवाज दी, कहा एक कॉफी दे जाओ। अजय की यादों में खोई हुई नेहा सोफे से उठी, किचन में चली गई और जब लौटी तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक कप कड़क चाय अपनी लहराती भाप के साथ मुस्कुरा रही थी। अरे नेहू, मैंने तो कॉफी मांगी थी बेटा, पापा ने कप पकड़ते हुए कहा। नेहा ने पापा के हाथ में पकड़े हुए कप की ओर देखा और हड़बड़ा कर बोली, ओ हाँ, अरे अभी बना लाती हूँ पापा। एक घूंट भरते हुए पापा ने कहा, नहीं नहीं रहने दो, चाय बहुत अच्छी बनी है। सॉरी पापा, वो ध्यान ही नहीं रहा, नेहा ने कहा। नेहा के दिमाग में तो अजय की यादें घूम रही थी। अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, पापा ने कहा और मुस्कुराते हुए चाय पीने लगे। थोड़ी देर की खामोशी दोनों के बीच बसर गई। पापा चुपचाप चाय पीते रहे और नेहा ना जाने किस उधेड़ बुन में वहीं सोफे पर धम से बैठ गई। जब चाय खत्म हुई तो पापा ने कहा, ऐसे कैसे चलेगा नेहो, मैंने कितनी बार कहा है कि अजय को कॉल कर लो, आई बिलीव वो मान जाएगा, एक बार बात तो करके देखो। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को हाँ में हिलाया और मोबाइल में अजय के साथ वाली तस्वीर को देखने लगी। नेहू, तुम दोनों के ख्याल भले एक दूसरे से नहीं मिलते हो लेकिन तुम दोनों की मोहब्बतें एक है बेटा, तुम आज अजय को कॉल कर लेना, पापा ने कहा और किताब लेकर पढ़ने लगे। नेहा अब भी खामोश थी। अजय से आखिरी बार हुई उस लड़ाई की वजह कोई खास नहीं थी, बस इतनी सी बात थी कि अजय को केरला जाना था और नेहा ने कहा कि गोवा जाएंगे। बस इतनी सी बात पर बात बढ़ी और बढ़ती ही चली गई और यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। नेहा अभी अपने पापा की बात के बारे में सोच ही रही थी कि वो अजय को कॉल कर ही लेगी, तभी अजय का कॉल आ गया। हेलो अजय, कैसे हो, नेहा ने हकलाते हुए इतना ही पूछा। ठीक नहीं हूं यार, तुम कैसी हो, अजय ने ऐसे कहा जैसे अभी वो रो पड़ेगा। हम दोनों जुदा होकर कैसे ठीक रह सकते हैं अजय, नेहा ने कहा। हाँ यार, काश हम कभी जुदा ना होते, अजय का गला रुंधाया और आंखों से आंसू भर गए। अब नहीं होंगे, मैं आ रही हूं शाम को, नेहा ने कहा और उसका भी गला भरा हुआ और आंखें छलक रही थी। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उन दोनों के चेहरे पर खुशी देखकर बेरहम वक्त दूर खड़ा रश्क करने लगा। वक्त की गर्दिश ने कुछ वक्त के लिए उन पर अपना आसीब ज़दा लम्हा डाल तो दिया था लेकिन उनकी मोहब्बतें उस लम्हे की चपेट में आने से बच गई थी। एक लंबा वक्त लगा इस बात को समझने में कि उनकी मोहब्बतों के बीच किसी भी मतभेद की जगह नहीं थी। दोनों अक्सर यही सोचा करते थे, उस गजल की लाइने, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर घड़ी हर जगह हो गए। शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया दीपिका जी, बहुत शुक्रिया, शानदार पढ़ा आपने।
थैंक यू सो मच, शानदार कहानी थी वसीम जी।
बहुत शुक्रिया। सजीव सर से मैं मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम कहानी बुनो के 15 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज 16वां एपिसोड है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आप सबसे वादा किया था कि आज हमारे मेंटोर सजीव सारथी जी ऐलान करेंगे बेस्ट स्टोरी राइटर का, जो पिछले 3 महीनों में पढ़ी गई कहानियों के आधार पर तय की गई है। तो सजीव सर, प्लीज बताएं कि कौन है हमारे बेस्ट कहानीकार, बेस्ट स्टोरी टेलर, और उन्हें सम्मानित करने के लिए कहानी बुनो की तरफ से क्या तोहफा देने वाले हैं आप।
हाय वसीम, थैंक यू सो मच. दीपिका जी नमस्कार, वीडी भाई नमस्कार.
नमस्ते
सजीव जी.
तो एक्चुअली ये जो है मैंने और वसीम ने जब ये मुझे अभी भी याद है एग्जैक्टली कि जब हम लोगों ने 3 महीने पहले ये प्रोग्राम डिस्कस किया था तब हम लोग बहुत एक तरीके से डाउट में थे कि पता नहीं हम इसको कैसे लेके आगे जाएंगे. लेकिन कॉन्सेप्ट इतना प्यारा था कि हम लोगों को नहीं रुका गया. हमें ये डाउट थे कि पता नहीं कितने हमें राइटर मिलेंगे, कौन लिखेगा, कैसे हम लोग इतने जल्दी लोगों से एक एक हफ्ते में कहानियां लिखवा लेंगे और कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे. तो बहुत सारी चीजें डाउट में थी और यकीनन मुझे लगता है कि वसीम के जहन में भी ये सब कुछ चल रहा होगा. बट समहाउ हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया और देखते देखते जो है 3 महीने निकल गए. यकीन नहीं होता कि हम लोगों ने 15 एपिसोड कर लिए, यानी कि 15 नई कहानियां हम लोगों ने क्रिएट करके लोगों को सुना दी. देखिए ये कहानियां पहले कभी लिखी नहीं गई है और ये कहानियां इसी दौरान लोगों ने लिखी है. कितना अमेजिंग है कि ये कहानियां बिल्कुल इसी प्रोग्राम के चलते हुए लोगों ने रची हैं और वो हमने यहाँ पे सुनाई है. तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है और करीब मेरे ख्याल से 6 या 7 नए राइटर्स हम लोग लेके आ पाए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से और ज्यादातर उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने कभी लिखा नहीं था. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, वीडी भाई का ही लगा लीजिए. वीडी भाई बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं. लेकिन मैं कभी भी इनको बोलता रहा कि आप कहानियां लिखें, कभी नहीं लिखा इन्होंने. और इस प्रोग्राम का कमाल देखिए, दीपिका जी का और वसीम जी का जो प्रेजेंटेशन है ये उसका कमाल कहूंगा मैं, कि वीडी भाई ने एक के बाद एक 4 कहानियां लिखी और 4 कहानियां इनकी फीचर हुई. कहानियां तो इन्होंने और भी ज्यादा लिखी होंगी लेकिन 4 कहानियां फीचर हुई. तो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा वसीम को, इतना शानदार आप लोग प्रेजेंटेशन करते हो. स्टार्टिंग में जो आप बोलते हो ना वसीम भाई, वो लाजवाब है. मतलब वो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड करके रखने लायक है. इतना सुंदर राइटिंग आप करते हो वहाँ पे.
बहुत शुक्रिया सर.
दीपिका के बारे में तो कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है, मतलब दुनिया जानती है अब उनको कि भाई वो इतना शानदार वाचन करती हैं. कहानी जब सुनाती है ना तो हर नीचे आप देखिए, कमेंट्स देखिए, सभी लोग ये लिखते हैं कि कहानी हमारी आंखों के सामने चल रही है. ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है दीपिका, यू हैव दैट वॉइस. और जो प्रेजेंटेशन है वो इतना शानदार रहता है कि हम लोग उस कहानी में खो जाते हैं लिटरली. ये होता है तो बहुत ही कमाल की बात है आप दोनों की, बहुत कमाल की. और इतना शानदार
आपने अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मैं निभा पाई और सबको पसंद आया. मैं बहुत ही शुक्रगुजार आपकी हूँ सदीप जी और वसीम जी का साथ और बाकी हमारे लिसनर्स और जो राइटर्स हैं उनका साथ मिला. तो आगे हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे. थैंक यू
जी. तो मैं सभी राइटर्स का जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है ना, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, सभी को बधाई दूंगा. आप सब बधाई के हकदार हैं, आप सब विनर हैं एक तरीके से, क्योंकि आप सब ने एक जो कलम कभी आपने मतलब कहानी लिखने के लिए नहीं उठाई, आपने वो इस प्रोग्राम को सुनकर उठाया और आपने कहानी लिखी और वो कहानी हमारे प्रोग्राम में फीचर हुई. ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, आप सब विनर हैं. लेकिन अल्टीमेटली हमें 15 एपिसोड के बाद एक विनर डिसाइड करना है और मैं मतलब मुझे बड़ी खुशी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने छोटे भाई का नाम यहाँ ले रहा हूँ. ये है विश्व दीपक भाई हमारे, जो पहली बार इस प्रोग्राम के दौरान कहानीकार बने और एक के बाद एक मतलब लोग हैट्रिक लगाते हैं. इन्होंने चौका मारा है और 4 कहानियां इनकी फीचर हुई हैं और कमाल का राइटिंग इन्होंने दिखाया है इस प्रोग्राम के अंदर. तो वीडी भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. वीडी भाई जो है हमारे इस 15 एपिसोड के सीजन के विनर हैं हमारे और इन्होंने
धन्यवाद सजीव जी
तो वीडी
भाई को बहुत बहुत बधाई.
धन्यवाद वसीम जी, धन्यवाद.
सजीव सर मैं चाहूंगा कि तोहफे के तौर पर कुछ अच्छा खासा ऐलान करें ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स या आगे आने वाले सीजन में कहानीकारों को एक एनकरेजमेंट मिले कि वो और भी बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां लिखें.
जी डेफिनेटली. और ये हमारे पहले विजेता हैं वीडी भाई और वीडी भाई को हम जो है 5 किताबों का सेट देंगे, 5 कहानी की किताबों का, जो मुझे लगता है इनको
बहुत खूबसूरत
लेखक बनाएंगे इनको.
मतलब तो वेडी भाई आपसे पूछे तो किताबों से बढ़िया मुझे कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है मेरे लिए.
इससे बेहतर तो कुछ तोहफा हो ही नहीं सकता.
जी जी
बिल्कुल बिल्कुल. तो वीडी भाई आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर. क्या कहना चाहोगे इस सफलता के बारे में?
जी सबसे पहले तो धन्यवाद सबका, सबसे पहले सजीव जी का धन्यवाद एक्चुअली मैं बोलूंगा, क्योंकि जब कहानी बुनो शुरू भी हुआ था तो मुझमें ऐसा ये नहीं था, हिम्मत नहीं थी, मैं हिम्मत वर्ड यूज करूंगा कि मैं लिखूं। मैं सुनता था, मैं पहले एपिसोड से सारी कहानियां सुन रहा था। एक एपिसोड में जब सजीव जी ने कहा, वो भी ग्रुप में बोला था कि भाई बीबी तुम लिखो, तो मैं दो दिन तक सोचता रहा कि लिखने के लिए सजीव जी ने बोला तो लिखना तो है, लेकिन क्या लिखूं। तो वो वाला टॉपिक निकल गया, वो लिख नहीं पाया। बट अगले वाले में जब ये हुई कि नहीं लिखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर वही बात हुई कि शुरू किया तो हो गया, वो वाली है। और फिर हिम्मत दी वसीम जी ने भी, हिम्मत दी दीपिका जी ने दी कि नहीं। और जब दूसरी कहानी में वसीम जी ने कहा कि अभी तक की सबसे बढ़िया कहानी हुई है, तो उसकी अलग ही बात थी, क्योंकि उसी दौरान मैं वसीम जी की किताब भी पढ़ रहा था और मैंने उसी दौरान उनकी किताब खत्म भी की थी।
तो क्या बात,
चिरकुट दास चिंगारी जी। तो ये मैंने वो किताब उस दौरान पहले एपिसोड से लेकर दूसरे एपिसोड के बीच में पूरी किताब खत्म की थी, और काफी मैं उससे प्रोत्साहित भी हुआ था कि लिखना चाहिए। तो सजीव जी, वसीम जी और दीपिका जी की
मेरा लिखा, मेरा नॉवेल लिखा काम आ गया सर, सफल हो गया मैं।
जी जी, और मैं सही बताऊं वसीम जी, मैं
हाँ बीडी बोलिए, आप बोलिए।
जी मैं भी बता रहा था कि सही बताऊं, मैं इसलिए भी और ज्यादा एंकरेज हुआ था और मैं पढ़ना शुरू किया था क्योंकि मैं वसीम जी के फेसबुक प्रोफाइल से गुजर रहा था और मैंने उनके पिताजी के हाथ में वो किताब देखी थी, और वसीम जी ने लिखा भी था कि पिताजी आज ये किताब पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ कुछ उसमें गालियां पढ़ी है लेकिन उन्होंने माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, गाली देता नहीं है लेकिन लिख दिया है उसने गाली। तो मुझे लगा कि चलिए राइटर अलग होता है लेकिन इंसान से आप सीखिए। तो
अरे सर वो गालियां मैंने नहीं दी है, वो मेरे किरदारों ने दी है।
जी जी जी, मैं समझ रहा था, और वैसे भी नहीं है कि आप उसे।
हाँ मतलब वसीम के साथ मेरा काफी उठना बैठना रहा है, हम लोगों ने काफी कहानियां एक साथ सोची हैं और कई बार हम लोगों ने साथ में बैठकी करी है कहानियां लिखने में और धारावाहिक वगैरह सोचने में लिखने में। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि वसीम जो है ना बहुत ही नेचुरल राइटर है, मतलब कहानियां इनके जहन में एकदम से आ जाती हैं, मतलब बहुत नेचुरल लिखते हैं ये। और इनका अभी कहानी संकलन एक और आया है नैन बंजारे, वो भी अगर आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। वेरी ब्रिलियंट राइटर, और अभी जो हमारे इसी 15 प्रोग्राम में देखा था, दो या तीन कहानियां तो वसीम की हैं, और वसीम ने जो कहानियां लिखी हैं वो आप सुनिए, एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। और मैं दीपिका की एक और तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि दीपिका ने कितनी मेहनत से इन कहानियों में अपने एडिशंस डाले, मतलब बहुत सारे इन्होंने कुछ चीजें क्लाइमेक्स में अपने चेंजेस करे हैं, तो वो सब एक दिखाता है कि वो जितनी अच्छी मतलब वाचक है उससे उतनी ही अच्छी एक राइटर भी है, मतलब उनके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं वो कमाल की हैं, तो वो बहुत काबिले तारीफ बात है। आप दोनों की जो जोड़ी है ना वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है, बहुत कमाल
जी। सजीव जी इसका श्रेय आपको ही जाता है, बहुत बहुत थैंक यू।
बिल्कुल आप ही को जाता है इसका श्रेय।
आपके पास अगले हफ्ते का शीर्षक दे दीजिए।
जी जी
हाँ, अगले हफ्ते का दीपिका जी बताएं अगले।
जी, बिल्कुल वसीम जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सजीव जी को और विश्व दीपक जी को कि अक्सर जब वसीम जी से मेरी बात होती है किसी कहानी के बारे में, तो मैं वसीम जी को कहती हूँ कि आपके अंदर तो भगवान ने टाइपराइटर फिट करके भेजा है, हम कहेंगे कहानी और वो टक 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 शुरू हो जाएगी टाइप। ये चीज वसीम जी के लिए है, तो बहुत बहुत थैंक यू वसीम जी। आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत थी आपकी, पढ़ने में भी मुझे बड़ा मजा आया।
जी
जी, और जैसा कि सबको पता है कि अगले संडे को फादर्स डे का सेलिब्रेशन हमारे मेंसा पर रेडियो प्लेबैक हिंदी के कम्युनिटी पर के उससे भी हम करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी कुछ ऐसा ही टॉपिक देते हैं, क्योंकि पिता मुझे लगता है एक वटवृक्ष के समान होते हैं जिनकी शीतल छांव में पूरा परिवार सुकून पाता है, लेकिन हम बच्चे होते हैं ना जो माँ से अपना प्यार जताते हैं और पापा को शायद कुछ भी नहीं बताते। हाँ गुस्सा जरूर जाहिर करते हैं हम उनको कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है और ये वो, मुझे लगता है शायद सभी इस दौर से गुजरे होंगे, लेकिन जो उनकी कुर्बानियां या कहें जो हमारे लिए वो करते हैं वो दिखाते कभी नहीं है, ये बात शायद हमें बाद में समझ में आती है। तो इसी पे हम एक टॉपिक अपना रखना चाहेंगे, पापा मेरे पापा, तो मेरे ये पापा, हमारा पापा अगला टॉपिक है अगली कहानी के लिए। जी
बिल्कुल। तो दोस्तों महज 500 से लेकर 700 शब्दों में लिख भेजिए हमें इस खूबसूरत टॉपिक पर एक खूबसूरत सी कहानी, और मंडे तक भेज दीजिए तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी थोड़ा संपादन करने में। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी जो है मैसेज बॉक्स में भी है, kahanibuno@gmail.com kahanibuno@gmail.com। तो कहानियां लिखते रहें और भेजते रहें, सुनते रहें, और हमारा खास प्रोग्राम कहानी बिनो सिर्फ मेंजा पर, और अपने सुझाव मशवरे भी हमें देते रहें ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी खास और भी बेहतर बना सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और बधाई उनको विजेता बनने के लिए। और ये सिलसिला
जी, और हम उम्मीद करते हैं वसीम जी हम उम्मीद करते हैं और भी ऐसे विनर्स हमें मिलते रहेंगे जो अपनी कहानियां भेजते रहें। तो सब रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत थैंक यू सजीव जी,
थैंक यू ऑल, थैंक यू।
इफ यू एंजॉयड दिस, डाउनलोड द मेंसा ऐप एंड स्टार्ट योर ओन लाइव ऑडियो कन्वर्सेशन।